हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नाश्ते के बाद हमेशा की तरह आंशी अपने फ्लोर पर आ गई और वॉक करने लगी। आंशी नहीं जानती थी कि इस वक्त विधिक उसे अपने आईपैड स्क्रीन में देख रहा है। आंशी ने चहलकदमी करते हुए अपने मन में कहा, वो विधिक राणा है, इतना सीधा नहीं जितना हम उसे समझ रहे हैं। उसने मुझे सब कुछ बताया है, वो भी इतनी जल्दी, तो ज़रूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। विधिक मुझे लेकर जा रहा है तो ये अच्छा मौका है जब मैं उसे छुपकर अमन को अपनी लोकेशन बता सकती हूँ। आई होप आज मुझे ये चांस मिल जाए। अगर मैंने अमन को बता दिया तो वो सबसे पहले मुझे ढूंढ लेगा। मेरा काम यहाँ विधिक के खिलाफ सबूत ढूंढना था, लेकिन विधिक तो वाकई सब कुछ छोड़ चुका है और इस विला में कुछ नहीं है। आंशी को टहलते हुए देखकर विधिक के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने गर्दन टेढ़ी करके कहा, यही सोच रही हो ना बटरफ्लाई कि कैसे अपने हस्बैंड को कॉन्टैक्ट करके बता सकूं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है बटरफ्लाई, अगर तुमने इसे पास कर दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम फेल हुई तो तुम्हारे अपनों के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला। मैं हर एक शख्स को ख़त्म कर दूंगा। जहाँ आंशी आज मौका देखकर अमन से कॉन्टैक्ट करने की फिराक में थी, तो वहीं विधिक भी आंशी का टेस्ट ले रहा था। उन दोनों को ही आज शाम का बेसब्री से इंतज़ार था। दूसरी तरफ अमन अपने घर पर वापस लौट चुका था। सुबह के वक्त वो घर लौटा था। हमेशा की तरह तेजो जी और चेतना जी डाइनिंग टेबल पर थीं। उन्हें अब तक खबर नहीं थी कि अमन ने आंशी को कहाँ भेजा है। अमन ने उन्हें यही कहा था कि आंशी अपनी आगे की एजुकेशन के लिए बाहर गई है। जैसे ही अमन डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, तेजो जी ने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पिछले कई दिनों से वो परेशान ही रहता था। तेजो जी ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर तुम्हारा आंशी के बिना मन नहीं लग रहा तो उसे वापस बुला लो, उसकी एजुकेशन यहाँ से भी कंप्लीट हो सकती है, या फिर तुम उसके पास चले जाओ। तेजो जी की बात पर सहमति जताते हुए चेतना जी ने कहा, मैं भी इसे यही कहने वाली थी बिजी, देखिए ना कैसे शक्ल पर 12 बजे हैं, ना रात को टाइम से आता है और दिन में भी पूरे टाइम गायब रहता है, इसकी हरकतें वापस पहले की तरह हो गई हैं। हम दोनों ही अभी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, हमें वेट करना होगा, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, अमन ने बुझी हुई आवाज़ में जवाब दिया और फिर कमरे में चला गया। आंशी की एब्सेंस में उसका कोई भी काम में मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो टाइम से घर भी नहीं आता था। अपने कमरे में आते ही अमन की नज़र बेड के ऊपर लगे एक बड़े से फोटो फ्रेम पर गई, जिसमें अमन और आंशी साथ में थे। अपने कमरे में आते ही अमन बेड पर बैठ गया। वो आंखें बंद करके आंशी को याद कर रहा था। इस वक्त अमन गहरी सांसें ले रहा था और उसका चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे वो अगले ही पल रो देगा। अमन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी पलकें भीगी हुई थीं और उसने भारी आवाज़ में कहा, प्लीज़ वापस आ जाओ, कभी परेशान नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा तुम्हें कुछ नहीं आता, ना ही किसी चीज़ के लिए फोर्स करूंगा, तुम जैसे कहोगी वैसे कर लूंगा, अपनी जॉब भी छोड़ दूंगा, पूरा टाइम तुम्हें दूंगा, पर प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। आंशी, मेरे लिए तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो रहा है, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकता इस वक्त मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी आदत है बच्चों की तरह ज़िद करने की, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। मैं हाँ कह भी कैसे सकता हूँ तुम्हें खुद से दूर भेजने के लिए, जबकि मेरे लिए तुम्हारे बिना एक पल भी बिताना मुश्किल हो रहा है। बोलते हुए अमन की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। इससे पहले वो किसी के लिए नहीं रोया होगा, लेकिन जब से आंशी गई थी उसके लिए खुद के इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और वो अक्सर आंशी की याद में रोया करता था। शाम के 7 बज रहे थे। विधिक आंशी को लेकर रेस्टोरेंट जाने वाला था, इसीलिए उसने आंशी के लिए कपड़े भिजवा दिए थे। उसने आंशी के हिसाब से नेवी ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन भिजवाया था जो लॉन्ग स्लीव्स का था। उसके साथ एक फर का स्कार्फ था जो ब्राउन कलर का था। उसके साथ पहनने के लिए डायमंड ज्वेलरी थी। आंशी ड्रेस चेंज करके तैयार हो गई थी। उसकी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और पीछे से बैकलेस थी। आंशी ने स्कार्फ फैलाकर लगा लिया ताकि उसे ठंड ना लगे। इस वक्त हल्के मेकअप के साथ वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आंशी ने खुद को आईने में देखा और धीरे से कहा, आई मिस यू अमन, मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। जब तुम मेरी तारीफ करते थे तब मुझे और अच्छा फील होता था। चिंता मत करो, अब हम ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहेंगे। आंशी ने हील्स पहने जो नेवी ब्लू कलर के ही थे। वो विधिक के साथ जाने के लिए नीचे आई। विधिक ने भी उससे मैच करता नेवी ब्लू कलर का कस्टम मेड सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आंशी उसे देख कर हल्के से मुस्कुराई, तो वहीं हरलीन उन दोनों को देख कर बोली, दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे हो, मेड फॉर ईच अदर, कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, बाहर ध्यान से जाना। नज़र लगने के लिए लोगों का होना ज़रूरी है बुआ, मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ हम दोनों के अलावा 2 सर्विंग स्टाफ होंगे, वो भी फीमेल हैं, तो किसी की नज़र नहीं लगेगी, विधिक ने मुस्कुराकर कहा और फिर आंशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आंशी ने विधिक का हाथ पकड़ लिया था और वो दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे। विधिक और आंशी अपनी अपनी तरफ से तैयारी करके घर से बाहर निकले थे। जहां आंशी को अमन से कांटेक्ट करना था तो वहीं विधिक की तरफ से ये आखिरी टेस्ट था। अगर आंशी उसमें पास हो जाती तो शायद विधिक उस पर पूरी तरह यकीन कर सकता था।